तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय मदभक्ताय नमो वैराग्य युग भक्ति रस प्रयत्न अपायन मान अनुभेक्ष मंद कृपां रुदिरिज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभु माश्रया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्थितं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतरितयं मुनिमानुतु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना विज्ञाय राधे त्वं नय माम शरणम्।
नारद श्री नारद गोस्वामी उद्धव जी और गोप कुमार का वार्तालाप चल रहा है, उसमें नारद जी आनंद में उत्फुल्ल होकर के कृष्ण लीलाओं का नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लीलाओं का स्मरण होता जाता है, उन लीलाओं का नाम लेते हुए चल रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने गोपी रेणु गीत के संबंध में कई दिनों से कुछ आलोचना किया, विशेष करके हम लोगों के गोस्वामियों का विचार गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का विचार, और उसमें भी विशेष करके चैतन्य महापुरुष की कृपा से इनके हृदय में जो उदित हुए, ये चैतन्य महापुरुष ही इसके मूल वही है। वो यदि नहीं आते और उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा नहीं करते तो ऐसी चीजें जगत ने प्रकाशित नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसका मूल। इसलिए बोलिए वैष्णव लोग, क्या श्रीमद्भागवत अनुशीलन के समय, नित्य लीला के समय, कोई ग्रंथ पाठ करने के समय, कुछ भी भक्ति की क्रिया आरंभ करने के पहले चैतन्य महाप्रभु की जरूर वंदना और उनके चरणों में प्रपत्ति जरूर ग्रहण करके ही चले, चाहे सनातन गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी हो और उनके जितने भी अनुग वैष्णव हैं, जरूर उनकी किसी न किसी रूप में जरूर वंदना करके उनकी कृतज्ञता को स्वीकार करके आगे बढ़े। जो महाप्रभु की कृतज्ञता को नहीं ग्रहण करते वो गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं, तो समझो जैसे उनकी बुद्धि में अभी कुछ ये सब समझ में नहीं पूछा, महाप्रभु का अवदान उसने समझा ही नहीं। इसलिए हम लोग जो अभी अनुशीलन कर रहे हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की कल्पना का ऐसा स्मरण है। हम लोग कल हंताय मद्रबला श्लोक का अनुशीलन कर रहे थे, तो उसमें हरिदास वर्ज शब्द आया था। इसमें हमने अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण हमने उपस्थित, और लोग उनको भले ही भगवान ही मानते हों गिरिराज को, और उनकी उपासना राधा कृष्ण की उपासना इत्यादि मानते हैं, किंतु हमारे संप्रदाय में इनको हरिदास वर्ज ही माना गया, क्योंकि गोपियों से अधिक कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता। और गोपियों में भी स्वयं जब श्रीमती जी ने अपने मुख से राधिका वक्त्र चंद्रा, राधिका जी के मुखचंद्र से जो बात निकली, कृष्ण से भी निकलती और राधा जी से भी निकलती, तो हम तो राधा जी की ही बात को प्रमाण मानते। कृष्ण कभी कभी लबार भी होते हैं, कभी कभी मुख के पर जिसके मुख पर वैसी बात कह देंगे कृष्ण, दो गोपियां हैं तो एक गोपी कह तुम हमारी सबसे बड़ी है, और वो मिल जाएगी तो वो कहते तुम ही हमारी सबसे बड़ी। रुक्मिणी सी जी से वही बात, सप्तभामा से वही बात, जिसके मुख पर वैसी बात कह देंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर जी कहते हैं मथुरा वासियों के बातों पर हम विश्वास नहीं करते। तो वो कृष्ण का वह अंश जो मथुरा वाला अंश है उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते, किंतु श्रीमती राधिका जी पर पूर्ण विश्वास। इसलिए उनका कहना राधिका भी, राधिका मुखचंद्र के मुख से जो निकला है कि ये हरिदास वर्ज हैं, इसलिए हम लोग उनको हरिदासों में श्रेष्ठ ही कहें वीरराज, और उसमें हम लोगों का अधिक लाभ है। भगवान रहेंगे तो दूरी हो जाएगी, और यदि भक्त की श्रेणी में रहेंगे तो दूरी कम रहेगी, वो सहज ही मिलेंगे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव मात्र ही उनको हरिदास व्रत बताए। चैतन्य महाप्रभु को एक बार वैष्णव यहाँ के रूप सनातन इत्यादि ने गुंजामाला और एक गिरिराज की शिला भेजी। उस शिला को पाकर के बड़े आनंदित हुए, सिर पर रखे न आंखों के पलकों के ऊपर रखे, न हृदय के भीतर रखे न बाहर रखे, कोई चीज स्थिर नहीं कर पाए। समुद्र के पानी से स्नान कराए या परमानंद पुरी के कुप से गंगा जल मंगा करके उससे स्नान कराए या आंखों के जल से स्नान, कुछ भी स्थिर नहीं। कहां रखें, कैसे पूजा करें, वो गिरिराज जी को कृष्ण का स्वरूप और गुंजामाला को राधा जी का स्वरूप मान करके सेवा करते। पांच पत्तियों को, आठ पत्तियों को बीच में सुंदर कोमल तुलसी मंजरी और बीच में दोनों पत्ते कोमल लेकर के एक पूजा पानी भाव के सहित सेवा करते थे। उनको देखते ही बस गोवर्धन गिरी की बातें और गोपियों की बातें, सबकी बातें याद आ जाती। उनके लिए भाव सेवा बहुत ही सुंदर है, हम लोगों के लिए भाव सेना भी बहुत बहुत कठिन। कुछ दिन पूजा करने के बाद में गिर उनको दे दिया रघुनाथ दास गोस्वामी, देखा जाए ये योग्य लड़का है। ठीक उसकी पद्धति भी बतलाई, तुम निष्किंचन वैष्णव है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं जो सोने की पलंग बना दो, मंदिर बना लो और खाने के लिए राजभोग, और 10 बार 56 कि कितने बार उनको देना है, ये सब हमारे लिए संभव नहीं। तुम वही तुलसी के आठ और पानी उनको देकर के उनकी भाव सेवा कर, वो उनको उनकी सेवा करते थे। किंतु कैसी सेवा करते थे, महाप्रभु जिस रूप में करते हैं किंतु वो करते थे किस रूप में, राधा और कृष्ण का प्रेम देने वाले के रूप में करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है या रूप गोस्वामी ने लिखा है, राधा और कृष्ण को प्रेम देने वाले वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन जी और यमुना जी दो का नाम गिनाया है, ऐसे प्रेम को देने वाले। तो वो इसी के रूप में सेवा करते थे, इसमें हम लोगों का लाभ है। और कृष्ण स्वयं यदि गिरिराज जी हो जाएंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, अपने को पूरे रूप में नहीं दे सकते क्योंकि अपने वो है ही नहीं है। अपना जो कुछ है देह गेह सब कुछ तो वो तो दे दिया है श्रीमती जी को, अपना तो कुछ आने वो देने के लिए, इसलिए ये लोग कुछ देंगे तो ये सब कुछ दे सकती है पूर्ण रूप में कृष्ण। कृष्ण अपने को पूर्ण रूप में नहीं दे सकते, इसलिए हमारे संप्रदाय में इसी रूप में सेवा की बात है। इसलिए हम लोग भी इसी रूप में सेवा करेंगे, ये राधा और कृष्ण के प्रेम देने वाले हैं। इनका इनकी सेवा करने से राधा और कृष्ण का प्रेम मिलता है, ये देने वाले। प्रमत मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचयत नवजूनु दंदमश्मिन मंदम इतकिल कलनार्थक लग्न कस्तत दयरुमे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। कैसी सुंदरी हमने अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहास गृणपहरदास श्रेणी पर जेति नामा मृत उदितम श्री राधिका वक्त चंद्रा प्रजनवती लकत्ते क्लिप्त देदयस्तुतंति निज निकट निवासम देहि निरुपति श्री करुणेन श्री सचिनंदनेन त्वय कपट सठोपि तत्प्रियेणाद्भुतोष। मैं कपट हूं जैसा भी हूं किंतु मैं आपका हूं इसलिए आप हमें ग्रहण, हमारी कपटता को ग्रहण करता, हम अपने को सर्वस्व तुम्हारे चरण में तो वो जरूर कृष्ण प्रेम देने वाला। इसी रूप में हम लोग भी गिरिराज जी की उपासना करें। मान लिया कि कृष्ण गिरिराज जी कृष्ण ही है ना, तो उनसे ज्यादा हमारा मतलब है ना श्रीमती जी से मतलब है, हमारी आराध्या कौन है। मन्नाथत्व ब्रज विपिन चंद्र बनेश्वरी वो राधा जी ही हमारी आराध्या है, तो हमको तो उनको प्रसन्न करना है ना, उनकी प्रसन्नता से ही सबकी प्रसन्नता है। इसलिए हरिदास वर्ज यही हम लोगों के लिए, हरिदास वर्ज होने के लिए कुछ प्रारंभिक चीजों की जरूरत है। प्रकाश प्रकाश देखिए जैसे अंधकार ना हो, क्या है वो श्लोक तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ, निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब क्या है, तम है, ज्योतिर्गमय ज्योति के तरफ में चलो, हरि कथा ज्योति है। ठीक से सुनिए बैठ कर, तो हरिदास बनने के पहले कुछ और प्रयत्न करना, अग्रह है मुक्ति तो तबे सर्व बंधनाश तबे से होते बारे श्री कृष्ण ने दास, और श्री कृष्ण के दास होने पर भी कुछ बच रहता है, किंतु यहाँ पर सम्पूर्णिक भाव से यहाँ पर कृष्णदास राधादास इत्यादि को लेकर के यहाँ पर कहा गया है, साधारण रूप में कहा गया है, किंतु केवल कृष्णदास कहने पर भी और कुछ बच रहता है। फिर भी इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। क्या उतरना पड़ेगा, पहले मायादास, सब तो जगत का क्या लोग है मायादास, कैसे मायादास है, कृष्ण भोली सी जीव अनादि वही अतएव माया तारे दे पिशाची पाईले जन मति छन्न है मायाग्रस्त जीवर है से भाई कबू राजा कबू प्रजा कभी विप्र शूद्र कबू
कबू सुखी कबू दुखी
कभी दुखी कभी सुखी कभी कीट पुत्र एरूप संसार भ्रमित को भगवान जन
जी
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए से बीज ताते करे आरोपण मालिक भी भैया से बीज आरोपण
सवन कीर्तन जले करे से
तापरे
उपजिया बारे सकता
ये सब कतो सुंदर एरक रूपम रूप भागवत और वेद शास्त्र उपनिषद उठाउ नहीं कहीं नहीं है ये ऐसा। भक्ति के लिए यदि कुछ पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना पड़ेगा, चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए षट संदर्भ जरूरी है, षट संदर्भ मूल है, और षट संदर्भ को समझने के लिए भी हमारे सनातन गोस्वामी जी का बृहत भगवतामृत और रूप गोस्वामी के भक्ति स्वामी सिंधु उज्जवल जन्मणि का भी कृपा होनी चाहिए, नहीं तो ये सब ग्रंथ समझ में कुछ भी नहीं आए, या उन ग्रंथों को समझाने के लिए ये सब ग्रंथ भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी इत्यादि ये सब, इसलिए ये सब चीजें समझने के लिए हम लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है कि इस अंततः इस धारा में हम लोग आए हैं। आज नहीं तो कल इस धारा में हम लोग स्नान कर सकते हैं, इतने बड़ी भारी सभा। तो पहले हम लोग मायादास, मायादास माने यह शरीर देह और दैहिक धन जन पुत्र परिवार जितनी आसक्ति की वस्तुएं हैं उनके प्रति चित्त का लगना ये मायादासत्व है। संसार में यही है, बद्ध होने तक कुछ न कुछ रूप में ये जरूर रहेगा। यदि वो साधु और गुरु अथवा कृष्ण और गुरु की कृपा पाता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति बता दीजिए, अब यहां से उसका कुछ उत्थान हुआ तो माया दास से जबकि चला ऊपर में, कुछ सुकृति हुई, साधु संग हुआ, गुरु की कृपा हुई, अब वो गुरुदास हुआ। पहला स्टेप है गुरुदास। माया दास के बाद में क्या करेगा, गुरु ही तो पहचान, जो कुछ करेंगे गुरु को बिना कुछ नहीं, इसलिए गुरुदास हुआ। गुरुदास कहने से भी गुरुदास एक ही प्रकार के नहीं होते, पहला है गुरु ब्रुव, गुरु ब्रुव जैसे होता है ना ब्राह्मण ब्रुव, भक्त ब्रुव, वैष्णव ने शिष्य ब्रुव, ना तो शिष्य ब्रुव कहा, अच्छा शिष्य ब्रुव हुआ पहले, शिष्य ब्रुव के बाद में तामसिक गुरु शिष्य, गुरु का सेवक, तामसिक गुरुदास, राजसिक गुरुदास और सात्विक गुरुदास, निर्गुण गुरुदास। निर्गुण के बाद में ये निर्गुण हुआ उत्तम दास, वे हुए कनिष्ठ और मध्यम, और निर्गुण वाला हुआ ये हुआ उत्तम, और इसके बाद में और कुछ है, तब वो जाकर के होगा कृष्णदास। इस चीजों को बतलाने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ी सी हम देखो एक ऊंची नीचे अच्छे पड़े ना जाए सब चौबीस चौबीस सब समय धरे रहा ऐसा टूट टूट था कर ठीक समय पर चला गया। इस चीज को समझने के लिए गुरु ब्रुव समझो, गुरु का सेवक नहीं है किंतु सेवक कहता है, इसी को कहते हैं शिष्य गुरु। गुरु ब्रुव का भी लिखा है बात, गुरुत्व नहीं है किंतु बहाना करता है गुरु होने का, और शारीरिक और सांसारिक सुखों के लिए ही शिष्य करता है तो वो गुरु ब्रुव है। परमात्मा से जिनका कोई संबंध नहीं वो है गुरु ब्रुव, और शिष्य ब्रुव उसको कहते हैं जो कि गुरु से यथार्थतः कोई संबंध नहीं, किंतु किसी को मारने के लिए, किसी से स्पर्धा करने के लिए, किसी से ईर्ष्या करने के लिए, तामसिक भावनाओं को लेकर कपटता पूर्वक गुरु पदाश्रय करते हैं, और गुरु की सेवा न कर अपने मन की उच्छ्वासों को भुनाते हैं। भुनाना जानता है ना, जैसे रुपया नोट भुनाते हैं ऐसे भुनाते हैं, तोड़ाते हैं, तोड़ाते हैं माने आदान चेंज करते हैं, इनको कहते हैं गुरु। प्रभुपाद जी के एक प्रबंध में हमने देखा, जैसे पहले तो होता था गुरु एक वर्ष तक शिष्य की प्रतीक्षा करता था देख करके, देखने के लिए, और शिष्य भी गुरु को देखने के लिए एक वर्ष तक का समय रखता था। इसके बाद में संतुष्ट हो जाने पर परमार्थिक आदान प्रदान होने के बाद में तब शिष्य को दीक्षा देते थे और वो ग्रहण करता था। इसलिए ये सब गड़बड़ियां नहीं होती थी जो आजकल करके युगों में होती है। थोड़े में इस शिष्य का हो गया, थोड़े में गुरु का हो गया, ऐसा नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर का संपर्क है, एक दो जन्मों का नहीं। और इसी संबंध के ऊपर में बेसिक पर रखा गया है कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण दास अथवा जो कुछ, जिसका आधार जो ठीक होगा वैसे ही। तो जैसे द्रोणाचार्य जी बच्चों को सिखला रहे हैं, बच्चे कौन हैं? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, दुर्योधन और सब, ये सौ भाई, सौ भाई वो और पांच भाई, 105 इनके शिष्य हैं। समान रूप में सिखलाते हैं, किंतु फिर भी प्रीति है अर्जुन पर अधिक। कोई एकलव्य व्याद बहेलिया का सरदार का लड़का, अर्जुन की प्रतिष्ठा सही नहीं गई, कुछ नास्तिक टाइप का, विद्वेषी टाइप का। गुरु के शिष्यों का लक्षण लिखा है कि उत्तम कुल का शिष्य हो, निम्न कुल के शिष्यों को ग्रहण मत करना। जिसका चरित्र ठीक नहीं, जिसका कुल ठीक नहीं, आचार विचार ठीक नहीं, माता पिता का ठीक नहीं, ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, विचार करके करेगा। इसमें बहुत पुलिस के गवर्नमेंट के पहले नौकरी में हमने देखा था, हम लोगों के समय में विचार होता था तब लेते थे, सीआईडी आ करके सब देखते भाई इनका कुल कैसा है, माता पिता कैसा है, खानदान कैसा है। तो वो इनके पास में आया, काजी महाराज, प्रभु गुरुदेव, मैं आज से आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं, आप कृपया मुझे भी धनुष इत्यादि की शस्त्र शिक्षा दे। तू कहां रहता है? तो अमुक जगह। पिता कौन है? तो ये किस लिए ये धनुष विद्या ये लेना चाहता है? मौन हो गया, बहुत पूछा तो भी नहीं बतलाया, किंतु भीतर में थी। अर्जुन को भी नीचा दिखलाना है, दुर्योधन से मित्रता थी, जैसे कर्ण का था ना ऐसे इनसे थी, भीतर बड़ा कलुषित था। देख करके गुरु तो नाड़ी देखते ही समझ जाते हैं इसकी नियत ठीक नहीं, ये लेना चाहता है कि शीर्षा बस जगत का ध्वंस करेगा। आज भाई हमारे यहां आपके लिए स्थान नहीं, हम तो यही राजकुमारों को शिक्षा देते हैं जिनका शील आचार विचार ठीक है, हम दूसरे को ग्रहण नहीं करते। लौटा दिया, बड़ दुखी होकर के वो चला गया वन में जाकर के, और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और सीखने लग गया। कुछ दिनों के बाद में जब इन लोगों की शिक्षाएं कुछ आगे बढ़ गई तो ये समस्त बच्चों को लेकर के वन में गए इनकी परीक्षा करने के लिए, कैसा कैसा कोई सीखा। तो जब वन में पहुंचे तो एक कुत्ता था, वो भौंकने लगा जोर से इनको देख करके। इतने में देखा क्या, उसका भौंकना एकदम बंद हो गया। भाई बंद क्यों हो गया, चलो तो देखें। देखा जी बाण से उसका मुख भरा पड़ा है किंतु कहीं भी क्षत विक्षत नहीं है। भाई ये बाण कौन चलाया ऐसा जो कहीं चोट नहीं लगी और मुख एकदम बंद हो गया। अब जिधर से बाण आ रहा है उसकी दिशा उन्होंने मुख से निर्धारित कर लिया, कुत्ते का मुख जिधर से है उसके ठीक कौन से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और उधर में चलने गए आगे। देखा जैसे एक युवक काला बड़ा डील डौल का हाथों में तीर धनुष लेकर और खड़ा है। देखते हैं इनको, प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, तुम कौन है? तो मैं एकलव्य हूं, ये बाण तुमने चलाया? तो हां हमने चलाया। बड़ा हस्तलाघ हो तुम्हारे अंदर में, तुमने किसे सीखा, तुम्हारे गुरु कौन है? बस साष्टांग प्रणाम किया, आप ही हमारे गुरु, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। तो ये देखिए आपकी मूर्ति हमने रखी है और इसी से शिक्षा मैंने ली। अच्छा तो तू हमारा शिष्य है? कहा ठीक, तब तो तुम बहुत सीख गया, तो तुमने दक्षिणा तो हमें दी नहीं गुरु को, तो दक्षिणा दे दो। कहिए कहिए आप जो कुछ कहेंगे वो दे दूंगा, ये समस्त शरीर आपके लिए। तो ठीक, अपना तुम दाहिना अंगूठा काट करके हमको दे दो, बस एक सेकंड की देरी नहीं की, बस हाथ काटा और रक्त से लहू लुहान हो गया। उन्होंने ले लिया, ये नहीं कहा जैसे तू बड़ा शिष्य है तू अपना अंगूठा दे दिया, ये किया, कोई भी महाभारत में इसका वर्णन ले लिया। लेकर के ठीक, बस पांचों पांडवों को लेकर के चले आए, विषाद के साथ में आए। इसलिए हम जिसको शिक्षा नहीं देना चाहते थे और उसने ये सीख लिया, ये अच्छी बात नहीं हुई, जगत का मंगल नहीं होगा। वही एकलव्य बड़ा जब हुआ महाभारत के युद्ध में के बाद में, जब समाप्त अभी होने को ही था, तो कृष्ण से युद्ध किया और युद्ध करके कृष्ण को और पांडवों को मारना चाहा, तो कृष्ण ने चक्रसु दर्शन से उसको काटा था। तो कृष्ण किसको काटते हैं चक्रसु दर्शन के द्वारा, कैसे दुष्ट लोगों का संहार करते हैं। ऐसा ये था गुरु की इच्छा, जब गुरु को अर्पण कर दिया शरीर, गुरु कहते हैं जो कुछ करते हैं गुरु आज्ञा ही अभिचारण, गुरु की आज्ञा का विचार नहीं करके पालन करना ही तो शिष्य का कर्तव्य है। उन्होंने कहा ये तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा पढ़ना अच्छा नहीं है, किंतु हम पढ़ेंगे ही। वो किसी कारण से कह रहे हैं जगत के मंगल के लिए कह रहे हैं, उसका तुमने उल्लंघन किया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो कर्मी जड़ है वो तो इसको आदर्श गुरु सेवक के रूप में मानेंगे, क्योंकि कर्मी जड़ है, बुद्धि उनकी ध्वंस हो गई है, उनका कोई विचार शक्ति नहीं है, वो स्थूल दर्शी हैं, इसलिए भीतर में वो परमेश नहीं करेंगे, इसमें परमार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए ये तो गुरु गुरु हुआ। अब आगे के में चले, तामसिक गुरु सेवक, गुरु दास, कर्ण को ले लो, कर्ण गया अर्जुन की प्रतिभा देखकर और कुछ अपमानित हुआ। वो रंगशाला में जब अर्जुन से बराबरी कर रहा था, अंत में वहां पर भीष्म पितामह जी ने कहा कि तू आया है यहां पर समता करने के लिए, ये राजकुमार हैं, तुम पहले बतलाओ, अपना वो कर्तव्य दिखला लिया ना, वो सब अर्जुन के बराबरी जितना बाण चलाना मत्सभेद इत्यादि सब कुछ कंप्लीट जैसा दिखाया तैसा ही उसने दिखा दिया। सब लोग वाह वाह करने लगे और ये तो दुर्योधन तो उठ करके एकदम गले से मिल गया। भीष्म पितामह ने कहा ये बतलाओ इनकी बराबरी करने आया तुम किसका पुत्र है? ये तो पांडु के पुत्र हैं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं,
राजपुत्र हैं।
तुम किसका पुत्र है? तुम्हारे अपने मैया का और पिता का नाम बतलाओ। बतला नहीं पाया तो तुम्हारा माता पिता का ठीक नहीं। तो उसने कहा जी मेरी मैया का नाम क्या? राधे,
राधा,
मैं उसे राधे। तो ये तुम उनका लड़का है? अरे वो तो रथ चलाता है, वो सुत पुत्र है। तो तू सुत पुत्र है, सुत पुत्र को यहां पर इन राजकुमारों से समता करने का कोई भी अधिकार नहीं, इसलिए तुम सीधे यहां से चले जाओ। उस समय में दुर्योधन एकदम उठ करके खड़ा हुआ और अपना राज को मुकुट देकर कहा ये अंग देश का राजा और हमारा परम मित्र है, इसका असम्मान न हो। किंतु भीष्म पितामह के सामने उसकी कुछ नहीं चली, लज्जित होकर के चला गया। उस समय में वो गया कहां? वो गया परशुराम जी के पास, इसको हराने के लिए हमको उनसे सीखना पड़ेगा। चला गया। मैंने कहा जी तू किसका बेटा है, कैसा है, तुम कौन जाति का है? तो मैं ब्राह्मण का लड़का। तो ठीक है, क्षत्रिय का नहीं कहा, नहीं तो वो गड़बड़ कर दिया। तो वो क्षत्रिय का न कह करके ब्राह्मण का पुत्र बदला है। ऋषि महर्षि लोग बड़े सरल सीधे होते हैं, मान ली उसकी बात, ये झूठ किस लिए कहेगा? और शस्त्र शिक्षा के लिए, परमार्थ के लिए है, इसलिए उसको देना चाहिए। इसलिए उसको ब्रह्मास्त्र से लेकर सब प्रकार के जितने अस्त्र हैं सबकी शिक्षा दी। अब उसका गुरुगृह से दीक्षा समारोह होना थी, बात के बाद लौटना था, दो एक दिन पहले ही
समावर्तन।
ऋषि उसके गोदी में सिर रख करके सो गए परशुराम जी। बरसात का समय, कोई लाल कीड़ा वज्र कीड़ा, वो कज ने कैसे ऊपर से चढ़ा और छेद करता हुआ नीचे निकल गया, रक्त की धारा बहने लगी। और ये कर्ण टस्य मश नहीं हुआ, जब रक्त इनके सिर में लगा तो कुछ गर्म जब लगा तो अरे ये क्या देखा, अरे रक्त रक्त कहां से रखता है, अरे ये तो तुम्हारे जंघे को छेद दिया ये कीड़े ने, तुमने कुछ कहा नहीं? तो नहीं गुरु जी, आपको देखा जैसे आप उठ जाएंगे, तू ब्राह्मण किसी हालत में नहीं हो सकता, तुम जरूर क्षत्रिय है, ब्राह्मणों को इतना धैर्य नहीं होता, जरूर हमको उठा देता। ठीक ठीक बोलो, मैं तो अभी अभिसंपाद, तुम किसका लड़का है? मैं सूत पुत्र हूं। तुमने कहा पहले क्यों नहीं कहा, तुमने किस लिए यह शस्त्र की शिक्षा ली, अब सच सच बतलाओ। तो अर्जुन को परास्त करने के, तू तो हमको पहले बतलाए नहीं, तू तो शिष्य नहीं, जाओ हमसे झूठ बोला, इसलिए जब समय आएगा हमारी दी हुई समस्त शिक्षाओं को तो भूल जाएगा, उस समय काम में नहीं, और जब तक नहीं है काम पड़ा तब तक ठीक है, तुमने जैसे हमसे किया हम भी वैसे कर, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये तामसिक भाव इसको कहते हैं, ये तामसिक गुरुदास हुआ। और ऊपर उठ जाइए थोड़ा, राजसी। राजसी किसको कहते हैं, सुख ऐश्वर्य भोग पत्नी इत्यादि के लिए, पति के लिए जो गुरु सेवा होती है वो होती है राजसी। भक्ति का ऐसा तीन विचार है ना, कहां पर ये विचार है, कपोल देव देवती के, राजसिक तामसिक और सात्विकी भक्ति। भक्ति तो एक ही प्रकार की है, किंतु जैसे जैसे अधिकारी लोग भक्ति का अनुशीलन करते हैं उस भक्ति का नाम वैसा ही कह देते हैं। भक्ति एक ही प्रकार की है, उत्तमा भक्ति केवल। ऐसे गुरु सेवक तो एक ही है, किंतु उनके भक्ति के भावना के या विषयों के तारतम्य से उनका नाम रख दिया गया है। अब राजसिक में चलो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की जो मैं शादी नहीं करूंगा, आ कुमार ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं राज्य पद नहीं ग्रहण करूंगा, किंतु अपने भाइयों की शादी के लिए काशी नरेश की तीन लड़कियों को जीत करके ले आए, अंबा अंबालिका और
अंबिका,
जिसमें दो की शादी होगी, तीसरे ने कहा हम आप ही से शादी करेंगे, आप हमको हर ले आए इसलिए आप ही से शादी होगी, जरूर करना ही पड़ेगा। उन्हें मैं तो शादी कर लू, तो कहा जी सबसे कहा इधर उधर सबसे कहा, किसी कि कोई भी इनकी सहायता ना कर सका। विषम तो महाप्रचंड थे, बलवान थे, उनके गुरु के पास में गई और उन्हें लगी डकर डकर करके, क्यों रोटी है बेटी, क्या बात हुई? तो भीष्म पितामह जी हमको जीत करके ले आए, उस समय उनका नाम था देवव्रत, देवव्रत में जीत करके ले आए और अपने भाई से शादी करा रहे हैं, हम उनसे शादी करेंगे, हमसे वो शादी करते नहीं है, आप कृपा करके उनको कह दीजिए जब जीत करके लाए हैं, हमने उनको माला देगी, मैं माला दूंगी, उनसे शादी होगी। अच्छा, बहुत रोने लगी, गिगड़ाने दया आ गई। भीष्म पितामह को बुलाया, उनके शिष्य थे ये परशुराम जी के, बुलाए अब बुला करके बोले जैसे तुमसे शादी क्यों नहीं करता, तुम जीत करके लाया था, हाँ क्यों नहीं करता, तो अपने भाई के लिए मैंने ये स्वयंवर जीत करके उनको लाया, हरण करके ले आया, वो मैं नहीं जानता, जब तुम जीत करके लाए तो तुम इसे शादी करो, तो आप ऐसा आदेश मत करें। हमने प्रतिज्ञा की है पिताजी से, मैं शादी नहीं करूंगा, राज्य नहीं लूंगा, ये माने राज्य संबंधी, और पिता है लोक संबंधी, इनके लिए मैं नहीं करूंगा। तो तुमने स्वयंवर जाकर के उसको जबरदस्ती पकड़ करके अपहरण क्यों किया? उस समय याद नहीं थी, अब इसका भागी कौन होगा? तो नहीं हमको ऐसा, तो या तो करो इससे शादी करो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। बस ये सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए, वो एक रास्ता तो खुल गया, कहा जब मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में आपसे मर जाऊंगा किंतु शादी नहीं करूंगा। बस उनके साथ में युद्ध हुआ, अंत में कोई नहीं जीत सका, न वही जीते न वही जीते, तब ब्रह्मा इत्यादि आकर के और दोनों में फैसला करा दिया, फिर शादी उन्होंने नहीं की। किंतु गुरु का अपमान तो हुआ, किस लिए हुआ? कोई पारमार्थिक कारण था, राजसिक, इसलिए ऐसे शिष्यों को, भीष्म पितामह जी जैसे लोगों को यहां पर राजसिक राजस गुरुदास। सात्विक में कौन आएगा? सात्विक गुरुदास सात्विक में आएंगे अरुणी और उपमन्यु। अरुणी का नाम सुना? अरुणी ने क्या किया? गुरु जी के आदेश के लिए, गुरुआइन के आदेश के लिए वर्षा काल में, वर्षा काल उसमें भी शिशिर माने ठंड का समय, कड़की माने कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही, वर्षा हो रही, और मेड़ बांधने के लिए वर्षा में मूसलाधार वर्षा में जाओ, रात के समय कहा जैसे उसका मेड़ बांधो ना तो पानी सब गिर जाएगा। बस ये लोग चले गए, ये चले गए, ये केवल अरुणी बांध को बांधने की चेष्टा की, किंतु बांध टूट रहा है बार बार, पानी की धारा बड़ी प्रबल आ रही है, कीचड़ देता है और फिर वो मिट्टी बह जाती है। अंत में देखा और कोई उपाय नहीं तो अपने आप सो गया, यहां से वहां तक पानी तो जा रहा है किंतु कम अब जाने लग गया, और सवेरे होते होते छिठूर का एकदम निर्जीव जैसा हो गया, लालटेन लेते गुरु अरुणी कहां है, अरुणी कहां है, अरुणी कहां है, मरते हुए जैसे अंतिम क्षीण आवाज में उत्तर आया, गुरु जी मैं यहां पर हूं, कहां है? मेड़ के पास में आकर के देखा जी सोया, तुम यहां पर सोया क्यों? तो पानी मैंने मिट्टी दी किंतु वो पानी बह जाता था, इसलिए मैंने खुद ही यहां पर, ठीक है उठो छाती से लगा लो, समस्त वेद वेदांग सही समस्त तो कुछ जो कुछ है सब तुमको स्फूर्ति हो जाए, बस मंत्र दृष्टा एक ऋषि बन गए। उपमन्यु की यही बात, कहा जो कुछ खाना मत हमारे आदेश से, तो बड़ा मोटा हो रहा है, गायों का दूध पी लेता है, अतः हाँ जब बछड़े पी लेते हैं इसके बाद में पी लेता हूं, बचा हुआ मत पीना। फिर कहा अरे तू मोटा हो रहा है, तू गैया का दूध पीता है तो अब नहीं पीता, तो क्या करता है? तो गैये जब बैठ करके पागुर करती हैं तो यहां पर थोड़ा सा लग जाता है, तो मैं उसको पोंछ करके और खा लेता हूं। अरे तू गायों का मुख से फेन निकाल लेता है, खबरदार कल से मत करना। अले जी जी आगे आगे ना कि
आगे हुजूर
आगे मैंने जो आज्ञा, ठीक। अब उस दिन कुछ नहीं खाया किंतु भूख लगी, तो उसने एकवंद का पत्ता लिया और खाया तो कुछ आंख में लग गई, अंधा हो गया, एक कुएं में गिर पड़ा। शाम को लौटा नहीं, गायें तो लौट आई, गुरुवाणी ने देखा जैसे वो कहां गया उपमन्यु, गुरु जी खोजने के लिए निकलते निकलते रात हो गई, अरे उपमन्यु तू कहां है, कहां है, कहां है, खोजते खोजते खोजते, अरे गुरु जी मैं तो कुएं में गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? अच्छा गए उसको कुएं से रस्सी ओसी डाल करके और जैसे तैसे निकाला, अरे तू कैसे गिर गया? तो गुरु जी आपने कहा जे दूध मत पीना तो मैं दूध बंद, आपने फिर कहा जैसे ये गायों का फिर मत लेना तो उसको फिर मैंने बंद कर दिया। तो मुझे बड़ी भूख लगी, मैं क्या करूं, तो मैंने एकवंद का पत्ता तोड़ लिया, देखा जो दूध जैसा निकलता है, तो उसमें से दो एक बूंद आंखों में चला गया, कुछ खाया और मैं अंधा हो गया। ठीक, तुम हमारा आदेश पालन किया, खाया नहीं, और जैसा मैंने कहा वैसा किया, जाओ वेद उपनिषद सब तुम खोज। वेद है क्या चीज? आंख भी ठीक हो गई। वेद माने वेद माने वेद त्रिकांडात्मक होता है, एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्न गतागतम काम कामालभंते, और फिर वहां से छोड़ करके फिर ये पृथ्वी में आते हैं। तो वेद त्रय माने कामना मूलक सकाम संसारिक वासनाओं वाली, इसलिए इसको सात्विक कहा गया इन दोनों को। अब इसे ऊपर थोड़ा सा चल चले हम, अब भागवत में प्रवेश करें। भागवत में देखते हैं, अब यह हम निर्गुण भक्ति की, अब निर्गुण गुरुदास, अब तक सात्विक राशिक और तामसिक और गुरु गुरु ले गए, अब चले हम लोग अब निर्गुण पर। भागवत में बतलाया सुदामा और कृष्ण गुरुवाइन के आदेश से जंगल में गए, वर्षा हो रही थी, सर्दी का वो भी समय, रात भर बोझा लेकर के सिर पर खड़े रहे और गए नहीं। सवेरा जब होने को हुआ, शांतिपिनी जी हरिकेन लेकर प्रदीप लेकर के, अरे कृष्ण अरे सुदामा तू कहां है कहते हुए आए। रात भर भीजते रहे बेचारे, और रात भर गट्ठर सिर पर पड़ा रहा। है कौन? स्वयं कृष्ण और ये सुदामा जी, दोनों भी तेरे। फिर गुरु जी आए, अरे तुम लोग लौटा क्यों नहीं? वर्षा हो गई, रास्ता मालूम नहीं किधर पानी अधिक है किधर कम है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अरे बोझा तो उतार देता तो गुरु जी वो भीज जाता, तो फिर रसोई कैसे? तो भीज तो ऐसे ही जाता, किंतु पानी में और भीज जाने से, नीचे हो जाने से तो और लबालब भर जाता। इसलिए हम लोगों ने ये सिर पर ही लकड़ी लेकर के जाओ, जितनी 60 कलाएं की 64 कलाएं हैं संपूर्ण तुम अधीत हो जाओ। ये 60 कलाएं क्या चीज हैं? या 64 कलाएं ये भी वेद के ही ये सब चीजें हैं, किंतु फिर भी कुछ परमार्थिक है। ये कृष्ण है नहीं इसमें, इसमें कुल अपना कोई लाभ हानि का विचार नहीं, गुरु सेवा, एकमात्र गुरु सेवा के लिए किया, इसलिए यह निर्गुण हरिदास
गुरुदास।
अब थोड़ा सा और आगे चलिए इधर की तरफ में, यहां तो निर्गुण हुआ किंतु अभी अभिष्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा आगे चल करके एक श्लोक हम लोग सुनते हैं, चिंता मनीर जयति सोम गुरुर गुरुर में शिक्षा
पुरुष भगवान
शिक्षा पुच्छ मौली
जतपाद पल्लव
कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते। अब इस श्लोक में थोड़ा सा देखो ये कैसा है और ये कैसे गुरु दास है। कहते हैं कि चिंतामणि हमारी गुरु, कौन सी गुरु? जिसने पथ दिखाया, इसलिए पथ दिखाने वाला यदि वेश्या भी हो कोई भी हो तो वो कैसे मान्य है? गुरु के रूप में मान्य है, पथ प्रदर्शक गुरु है उसके प्रति। हम कभी भी उसे उऋण नहीं हो सकते हैं कि पथ दिखाया, इसलिए दीक्षा ये वट प्रदर्शक गुरु की बात चैतन्य चरितामृत में भी कही गई है। दूसरा दीक्षा गुरु, तीसरा शिक्षा गुरु, इन सबको शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को कृष्ण का स्वरूप मानना, दोनों में किसी को कम मत मानना। कहीं कहीं पर दीक्षा गुरु अधिक श्रेष्ठ है योग्यता के अनुसार, कहीं कहीं शिक्षा गुरु भी श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे हमारे गुरु हैं और कृष्ण को यदि हम शिक्षा गुरु मानते हैं तो कौन श्रेष्ठ हुए? चैतन्य महाप्रभु को हम अपना शिक्षा गुरु मानते हैं तो कौन श्रेष्ठ हुए? अभी रूप गोस्वामी है हमारे दीक्षा गुरु, किंतु दीक्षा गुरु को वो क्या कहते हैं,
घोड़ा डिंगे घास
ये नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने पथ प्रदर्शक माने पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति हम इतने ऋणी हैं, तो जिस दीक्षा दिया उसके प्रति हम ऋणी नहीं है। उस समय याद रखना होगा किसका, हमारे श्यामानंद जी के गुरु हृदय चैतन्य ने, हृदय चैतन्य जी और जीव गोस्वामी को विचार करो। जिस प्रकार से इन्होंने यथाजोग्य जो सम्मान दिया ठीक ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। यथाजोग्य जो सम्मान जिसको प्राप्त है वो दे करके चलना, जब प्रदर्शक को देंगे तो दीक्षा गुरु को नहीं, दीक्षा गुरु को देंगे। शिक्षा गुरु में कुछ रागानुगा का कुछ संबंध है ना, दीक्षा शिक्षा गुरु में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दीक्षा गुरु को पिता के रूप में नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते, लज्जा संकोच है ना। किंतु शिक्षा गुरु कुछ छोटा चाचा जैसा है, छोटा चाचा समझते हो,
चाचा गुरु
तो गुरु से जो बातें नहीं होगी ना, चाचा गुरु जो है ना वो कुछ वो ऐसा है नहीं रहे ठहर उनको याद करने, वो छोटा माने कोई दोस्त यार दोस्त होता है ना, यार है कुछ यार दोस्त, उसके समान में समान भाव में खेलेगा। जैसे कृष्ण जो है रूप गोस्वामी जी शिक्षा गुरु हैं और सनातन गोस्वामी
दीक्षा गुरु,
चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण यदि शिक्षा गुरु हैं तो पतला उनके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। श्रीमद भागवत शिक्षा गुरु हैं, वंदे गुरु श्रीजूत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथानिताम
सजीवम।
और उसके बाद में शिक्षा गुरु और है कौन,
साद्वैतम
सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखा नितांश, ये सब शिक्षा गुरु। इसलिए ये सब चीज परमार्थ राज्य में याद रखना होगा। इसलिए भगवान से की पूछ्य मौली इनमें तीन गुरु को प्रणाम किया, एक तो वर्त प्रदर्शक कौन चिंतामणि बड़े आदर के साथ में और सबसे पहले, और दूसरा किया किसको, दीक्षा गुरु को सोमगिरी को, और तीसरा किसको,
शिक्षा गुरु मौली।
इनको किस लिए किया, जो हृदय में कृष्ण करुणामृत जैसा भाव सब उदित करा दिया, ये चैत्य गुरु के रूप में है और शिक्षा गुरु के रूप में भी है, यह परमार्थिक विशुद्ध भाव है। ये निर्गुण में भी उत्तम है ना, जिसको इतना ऐसा रत्न जगत के लिए दिया वो किसने दिया, कृष्ण ने तो स्फूर्ति कराई सिखी पुच्छ मौली, उन्हीं को लक्ष्य करके समस्त भावनाएं निकली। किंतु भाई थोड़ी कमी रह गई ने? कुछ कमी रह गई। और अब चलिए थोड़ा सा महाप्रभु के समय में, अब तो महाप्रभु से पहले युग का, महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया कि बनाया, किंतु फिर भी रूप कहते हैं जी हमारे गुरु जी हैं, सनातन प्रभु जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, जगत कहता है कि हमारे गुरु हैं, महाप्रभु जी को कहते हैं ना सभी लोग। हाँ इसमें बात भी कुछ ठीक है, बनारस में सनातन गोस्वामी जी के हृदय में सब कुछ, बाह्यता भी दिया और चित्त प्रेरणा के द्वारा दे भी दिया ने? वो जो चित्त गुरु है उसके रूप में भी दिया और डायरेक्ट उपदेश दिया। जीव का स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कैसा करना चाहिए, कृष्ण के क्या संबंध है, तीन चैप्टरों में संबंध अभिधेय और प्रयोजन का जो ऐसी शिक्षा दी, आज तक विश्व में ऐसी शिक्षा कभी भी प्रचलित नहीं थी। अब इससे बढ़कर के कोई गुरु होगा, यह है गुरु तत्व, यथार्थ गुरु। कृष्ण को भी सांदीपनी ने यह गुरु दिया होगा, अथवा अभी तक जितने गुरुओं की बात कही थी कोई भी ऐसी कोई शिक्षा दिया होगा अपने शिष्य को, इसलिए ये यथार्थ गुरु तत्व है। ऐसे गुरु का जो दास कोई हो तो वो क्या होगा, वो सर्वोत्तम गुरु दास होगा। अभी भी थोड़ा सा, अभी थोड़ा और बाकी रह गया, थोड़ा सा और बताएंगे आगे कहो। और सनातन गोस्वामी को जो वाराणसी में शिक्षा दी और उसके बाद में कहा प्रयाग में, आखिर पहले प्रयाग में तब यहाँ पर
पहले प्रयाग
में रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी। इसलिए रूप गोस्वामी जी वंदना क्या करते हैं, मैं भक्ति गोस्वामी सिंधु में प्रवर्तित हुआ जिसकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा, प्रेरणा शब्द दिया है ना, हृदय जस प्रेरणा प्रवर्ति तो हम रूपो बराक, बराको रूपयम, मैं बराक, बराक मैंने क्षुद्र होकर के थी। भक्ति गोस्वामी सिंधु और उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथों में प्रवृत्त हुआ जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से, प्रेरणा कौन देता है, गुरु देता है। इससे जिनकी प्रेरणा से हुआ, ऐसे जो कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम किया एक और दीक्षा गुरु को, सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को दीक्षा गुरु माना डायरेक्ट, इसलिए वो दीक्षा गुरु के रूप में, उसके लिए भी श्लोक है। सनातन गोस्वामी के लिए उन्होंने कहा विश्राम मंदिर तया तस् सनातन तनोर मदीशस्य, सनातन गोस्वामी हमारे मद ईश्वर, हमारे आराध्य हैं, ईश्वर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। क्यों, ये जो ग्रंथ हमारा भक्ति गोस्वामी सिंधु है ये कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए उनके विश्राम करने के लिए मंदिर का है, मंदिर है ये, इसमें सनातन गोस्वामी हमारे जो गुरु हैं इसमें विश्राम करें, अथवा जो नित्य सनातन जो ईश्वर हैं कृष्ण स्वयं वो इसमें विश्राम करें, इसलिए गुरु और भगवान दोनों ही इसमें विश्राम करें। भक्ति गोस्वामी सिंधुर भवतु सदा अयं प्रमोदाय, उनके प्रमोद के लिए भक्ति गोस्वामी सिंधुर, इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु को दोनों महापुरुष और एक तीसरे हैं कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर को उन्होंने क्या दिया, अंगूठा पिलाया, तो उन्होंने क्या बनाया, उनका ग्रंथ क्या है, आनंद वृंदावन, और छोटी सी स्थिति में ही अभी थोड़े दिन का बालक ऐसा सुंदर काव्य बनाया है, राधा जी का कृष्ण का प्रेम उसी में अत्यंत सुंदर अलंकारों से पूर्ण, शब्दालंकार, अनुप्रास और क्या क्या अलंकार से समेत ऐसा सुंदर बनाया कि सब लोग दांतों तले अंगुली काट दी, ऐसा कैसे बन गया, कभी कर्णपुर बन गए, ये है शिष्य। अब थोड़ा सा अब उपसंहार करते हैं इसके विषय में, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब चलिए महाप्रभु जी अपनी भाव दशा में अंतिम दिनों में काशीश्वर पंडित के घर में, वो कौन,
गंभीरा,
चौबीसों प्रहर भाव में विभोर रहते हैं। सेवा कौन करता है, और एक छोटा सा बालक भी है, कौन,
शंकर पंडित,
अरे वो गोपाल जो पीछे से गुरु गोपाल हुए, गोपाल गुरु पीछे से, तो वो दोनों सेवा करते, किंतु गोविंद ही का नाम प्रसिद्ध है। गोविंद जी महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार में हरिदास ठाकुर को रोज ले जाते हैं ना प्रसाद, क्योंकि वो आते नहीं, महाप्रभु जिसको जिसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसी से उनका संबंध है, और महाप्रभु का जिसे संबंध नहीं है उसका उसका संबंध है। शिष्य का भी ऐसा होना चाहिए, गुरु के साथ में जिसका संपर्क है उसके साथ में उनका भी संपर्क, वो प्रिय हैं। अब ये गोविंद जी सब कुछ समाधान ये करते हैं महाप्रभु जी के पास। ये शरीर किसका है? महाप्रभु जी का, गोविंद का है। वो उनकी सेवा करने के लिए कभी तो उनके ऊपर चद्दर डाल करके, रास्ता बंद है, महाप्रभु जानबूझ करके परीक्षा ले रहे हैं, तो उस पर चद्दर डाल करके इधर पैर दबाने के बाद में उधर में चले गए, उधर पैर दबाए, महाप्रभु जी सो गए। एक दो घंटा सो लिया, जानबूझ करके वो सो रहे हैं, तिथि पहर में उठे, जानबूझ करके उठे तो कहा, अरे तू आज गया नहीं प्रसाद पाने के लिए? तो नहीं प्रभु, आज नहीं। क्यों नहीं गया? मैं इधर में चला आया, कोई रास्ता था जाने के लिए नहीं। तो तू आया कैसे इधर में? तो प्रभु आपकी सेवा करने के लिए आपके अंगों पर उत्तरीय दे करके कपड़ा, और मैं उधर में चला। तो ऐसे ही लौट जाता प्रभु, उस समय तो मैं गया था आपकी सेवा के लिए, अब इधर मैं अपनी सेवा के लिए आऊंगी, ये कैसे संभव? देखो शिष्य में होने में कैसा करना पड़ता है, अपना विचार सब कुछ छोड़ करके अपने आराध्य जो गुरु हैं उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान देना पड़ता है, तिलांजलि दे करके करना, अपनी इच्छा के विपरीत हो तो उसको हम करें, तब तो गुरु सेवक है, नहीं तो नाम कटवा दो, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उन लोगों में आ जाएंगे हम गिनती। सबसे बड़ी मार्का की बात ये के है गोविंद जी की, जो कि प्रशंसा से भी ऊपर की चीज है, जिसको हम लोग शायद स्पर्श ना कर सके। क्या चीज? ये कहते हैं कि हमारे महाप्रभु जी के पास में रात में ये राय रामानंद और स्वरूप दामोदर आते क्यों हैं? उनका आना अच्छा नहीं इनको लगता, क्यों, किस लिए बतलाओ? तो जब ही आते हैं पहले तो कुछ ठीक रहते हैं, और जहां ये दोनों आ जाते हैं और रात भर रोते हैं और रुलाते हैं, न सुनते हैं सोते हैं न सुने देते हैं, कुछ कह तो सकते नहीं, चुपचाप बेचारे टुकुर टुकुर देखते हैं कि कब चले जाए, सुनते हैं सब, और उनका वह रोना देख करके उनका हृदय रोता रहता है। कितनी बड़ी भारी ये सेवा है, हम जब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचेंगे इस सेवा को नहीं समझ सकते, कितनी बड़ी भारी सेवा है। उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी, वही सर्वस्व जीवन के आधार है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तब तो गुरु सेवा करेगा। इसलिए हरिदास वर्ज, ऐसे लोग यदि हो तो ये हरिदास वर्ज। आज यहीं तक रहे वंछा कल्पतरु भ्रष्ट कृपा से।
राधा कुंदम गिरिवर महो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रत्यकृतया ते गुरुं तन्नतोऽस्मि वंछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पथ प्रदर्शक गुरु, और दूसरा बतलाया दीक्षा गुरु, और तीसरा बतलाया शिक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु को भी अवज्ञा कभी मत करो, अरे हमको तो इधर ही आना था, गुरु जी से ही मतलब था, वो तो आने का एक बहाना हो गया, ऐसा खबरदार मत करना। वो कृष्ण की प्रेरणा से ही वो व्यक्ति ने तुमको प्रेरित किया इधर आने का, इसलिए हम उसके ऋणी हैं और रहेंगे। इसलिए जरूर पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति या भक्ति होने के पहले, गुरु से संबंध होने के पहले जिन लोगों ने हमको सहायता दी भगवत पथ में आने के लिए, उन सब का हम ऋणी हैं। ऋणी होना ही वैष्णवता है, जिसमें ऋण नाम की कोई चीज नहीं, उसमें तो वैष्णवता एक लेश मात्र भी उसमें नहीं है। इसलिए उनका चिंतामणि को उन्होंने प्रणाम किया, दीक्षा गुरु रूपी सोमगुरी का उन्होंने प्रणाम किया, और अंत में शिक्षा गुरु शिखी पुच्छ मौली को प्रणाम किया। इसमें शिक्षा गुरु के ऊपर में कुछ महत्व दिया गया अधिक, क्योंकि कृष्ण ही है ना स्वयं, यहाँ पर शिक्षा गुरु महाप्रभु हैं, वहां पर तो महत्व देना ही पड़ेगा। तो भी हम दीक्षा गुरु के इस जगत में रेडी हैं, बिना उनसे उनसे संपर्क होता कैसे, भले ही महिमा उनकी हो। इसलिए दोनों में भगवान शिक्षा गुरु के रूप में होने पर भी प्रणाम करने पड़ेगा। आखिर उन्होंने तो इस चीज पकड़ करके हमको कृष्ण के चरणों में जुटाया, इसलिए उनके प्रति हमारी रहे। कभी कभी भजन राज्य में दीक्षा गुरु से भी कभी कभी शिक्षा गुरु का हो जाता है, तो अभी मूल में हम ऋणी हैं उनके। जैसे हमारे ब्रज में वो कल बतला रहा था हृदयानंद की हृदय और बतलाया जीव गोस्वामी के संबंध में श्यामानंद प्रभु को लेकर, दुखी कृष्ण दुखी कृष्ण दास उनका नाम था। तो गुरु जी से कुछ उच्च शिक्षा लेने चाहते थे, उन्होंने कहा कि वृंदावन में जाओ जीव गोस्वामी की, हम उनके पास भेज दिया। वो उनके पास में आए, शास्त्रों का अध्ययन किया, राधा जी के प्रति एकांतिक भक्ति उनको मिली। एक दिन श्रृंगार भट्ट में रहते समय झाड़ू देते समय कुंज में उनको सोने का नुपुर मिला, और मिलने पर उन्होंने जीव गोस्वामी के पास दिखलाया। जीव गोस्वामी ने कहा कि किसी को मत देना, बहुत से ठग तुम्हारे पास में आएंगी और उसको ठग करके ले जाएंगी, मत देना किसी को, जिसका को नुपुर वो आए तो उनके चरणों में हम पहना देंगे, बस यही काल है। ये ठीक बस। जहां थोड़ी देर हुई जी गोस्वामी के यहां से पढ़ करके गए, तो दोनों कोई दो सखियां गोपियां उनके पास में, अरे कृष्णदास दुखी कृष्णदास तुमको यहां पर कुछ मिला? मिला तो जरूर है, क्या मिला ये तुमको क्यों बतलाऊं? तुम्हारा कुछ गुम हुआ तुम बतलाओ। उन्होंने कहा जिसे हमारा नूपुर कहीं हमारी सखी का कहीं गिर गया है, मिल गया है तो दे दे, तो मिला तो है किंतु दूंगा नहीं, जिसका है वो ले जाए प्रमाण दे करके। नहीं तुमको लज्जा नहीं आती, तुम ब्रह्मचारी छोटा सा बालक और तुम स्त्रियों के पैर में कुमारियों के पैर में तुम नुकुर पहनाएगा, ये कैसी बात तुमने कह दी? तो तुम जो भी कहो हम तो देंगे नहीं, हम तो उन्हीं को देंगे। बहुत तरह से चेष्टा की नहीं दिया, अंत में लौट गई। हाँ सखी हमारी राजी है आएगी, किंतु तुम्हारे आंख पर पट्टी बांध करके और तुम पैरों में उनके नुकुर पहनाएगा, राजी है तो हम राजी। बस उनको ले आए और आंख पर काली पट्टी बांध दी और उनको वो पैर में पहनाने गए तो पैर छोड़े थे, रोने लगते। एक बार दर्शन तो कर लूं किसको पहना रहा, बस काली पट्टी हट गई और उन्होंने दर्शन किया, प्रेम में भी दूर हो गए। आज अब तेरा नाम दुखी कृष्णदास नहीं रह करके अब तुम्हारा श्यामानंद नाम हो गया, श्यामा को आनंद देने वाला है अपनी सेवा से। श्यामा जी कौन है? श्यामा जी राधा जी, उनको तुम आनंद देने वाला है, इसलिए तुम आशीष श्यामानंद होगा। और श्याम आनंद श्याम को भी आनंद देने वाले नाम से भी श्यामानंद हो जाता है, श्याम और आनंद श्यामानंद। बस एकदम कृतार्थ हो गए, तब से उनका नाम दुखी कृष्णदास से श्यामानंद हो गया। जीव गोस्वामी के पास में आया और सब बातें बतलाई, पर तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया। किसी से जब इनका सब कुछ अध्ययन हो गया तो वृंदावन धाम का दर्शन कराया और अंत में इनको फिर लौटा। ये तीनों लौट करके श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास और सुनाश प्रभु ये फिर तीनों लौट गए बंगाल में। ये इनके गुरु दीक्षा गुरु तो हैं कौन? हृदयानंद जी कलनाथ पाठ वाले, किंतु उन्होंने इनके पास में भेजा कुछ विषय के लिए जानने। यदि जीव गोस्वामी जी श्यामानंद जी अपने गुरु से कहते जी मैं उनसे पढ़ने कुछ जाता हूं और ये कहते मत जाना, हमारा शिष्य होकर के तुम उनके पास में जाएगा, वो अपना लेगा, अब फिर तुम हमारा शिष्य नहीं रह जाएगा, तो ये संकीर्णता हो जाती है। ये गुरुत्व का लक्षण, गुरु होता है परम उदार, इसलिए ऐसा नहीं करता। यदि होता तो हम लोग समझते जी उनका गुरु गुरु नहीं थे, उन्हें कुछ कमी थी, किंतु उनका उदय हृदय उनके पास होते हमारे शिष्य का कल्याण। इनका जीव गोस्वामी उनके प्रति जीव गोस्वामी कितना उच्च अधिकार है, वो तो विलास मंजरी है, हृदय चैतन्य भी कुछ होंगे कृष्ण लीला के, किंतु जीव गोस्वामी का बहुत उच्च अधिकार था सब विषय में, सिद्धांत विषय में, सब विषय में। उस समय में भारतवर्ष के सब प्रधान गणमान्य विद्वान भी थे, रसिक भी थे, सिद्धांत भी थे, इसलिए उनके प्रति तो उनकी भक्ति होनी स्वाभाविक है अधिक, किंतु उनके गुरु को ये नहीं हुआ कि हमारा शिष्य उनको अधिक आदर करता है, उनको इसी विषय का आनंद है जो हमारा शिष्य ऐसी विराट चीज को पाकर के मेरा भी जीवन कृतार्थ कर दिया, ऐसा ही परस्पर होता है। वहां पर वैवनस्य द्वेष हिंसा इत्यादि नहीं होती है, ये सब परस्पर, इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है तो दोषनीय है। क्यों? हमारे गौड़ीय वैष्णव में प्रत्येक वैष्णव ही गुरु है, प्रत्येक वैष्णव, नरहरी सरकार का वो कृष्ण क्या पुस्तक का नाम जिसमें वैष्णव मात्र को ही गुरु बतलाया गया, कृष्ण क्या पुस्तक का नाम, महाप्रभु के समसामयिक हैं, महाप्रभु जी उनके परिकर हैं, उन्होंने लिखा है वैष्णव मात्र ही गुरु है। कृष्ण भक्ति तरंगिनी अथवा कुछ ऐसा नाम है, उसमें ऐसा लिखा है प्रत्येक वैष्णव, और सचमुच में प्रत्येक वैष्णव ही यदि वैष्णव है तो गुरु है, अपने से उन्नत रसी सिद्धांत भी प्रत्येक वैष्णव की, भेद तो केवल यहां है पर तत्व में गोलोक वृंदावन में ये गुरु तत्व और ये सब नहीं, वहां पर तो सखी तत्व है, सभी की सखा तत्व है कि कृष्ण के परिकर सभी गुरु, यहां पर सनातन गोस्वामी गुरु है, रूप गोस्वामी उनके शिष्य हैं, और वहां पर सम कैटेगरी के वो सब सखियां सहेलियां सब, बल्कि रूप मंजरी की मर्यादा कुछ अधिक है, वहां पर ये सब चीज कोई भी चीज दूषणीय नहीं होता, छोटे बड़े का ये सब विचार नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी इस लीला में भी रूप गोस्वामी को प्रणम्य बतलाया, और एक तरह से उनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा या कृष्ण कृपा मिलती है ऐसा कह करके प्रणाम किया। कल तक हमने इस विषय का ये सब बतलाया था, अब थोड़ा सा और आगे चल चले इधर की तरफ। महाप्रभु संत दामोदर राय रामानंद के बाद में कवि कर्णपुर के संबंध में बतलाया, ये सभी लोग महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हैं। इसके बाद का युग आता है रूप सनातन जी का, ये लोग गुरु हैं और शिष्य कौन है? जी गोस्वामी और रघुनाथ दास इत्यादि। रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुगों में श्रेष्ठ है, रूपानुग वर है। महाप्रभु रूप गोस्वामी की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सब कूट कूट करके रूप रघुनाथ दास गोस्वामी है। भक्ति गोस्वामी सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में बहुत तरह के साधकों के साधन का क्रम बतलाया गया है, और तटस्थ रूप में सभी रसों का उसमें वर्णन है। किंतु रूप गोस्वामी क्या तटस्थ हैं या सभी रसों में हैं? या तटस्थ रख करके वर्णन किया है सबका, तटस्थ रख करके सबका वर्णन, एक किसी रस में वो अपना उनका रस है। उनका रस क्या है? उनका अपना रस मंजरी भाव है। मंजरी भाव किसको कहते हैं? सखियां बहुत तरह की होती, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर सखी। साधारण रूप में सखी वह है जो कृष्ण के प्रति अधिक आकर्षित होती है, कृष्ण के प्रति स्नेह तो सब में है किंतु कृष्ण स्नेहाधिक्य होती है, जैसे धनिष्ठा इत्यादि सखियां। और नित्य सखियां वो हैं जो, अच्छा कुछ सखियां ऐसी हैं जो सम स्नेह है सखी के प्रति और कृष्ण के प्रति, दोनों के प्रति स्नेह है, सम स्नेह कृष्ण के प्रति राधिका जी के प्रति। और कुछ है जो राधा जी सम स्नेह होते हुए भी राधा जी के प्रति कुछ अधिक झुकी, यह है ललिता विशाखा इत्यादि प्रिय नर्म सखियां और प्राण सखी, पृष्ठ सखी, और रह गई है नित्य सखी और प्राण सखी, ये लोग राधा जी के प्रति अधिक स्नेह, कृष्ण के प्रति नहीं। सब समय इनकी पाल्यदासी है, ये रहेंगी कहां? राधा जी जहां रहेंगी वहीं, और सब समय राधा जी के सुख में सुखी, दुख में दुखी, विरह में दुखी, मिलन में सुखी रहे, और इन्हीं की सेवा में सब समय व्यस्त रहे, इनका आदेश पालन करेंगे और इनके बहुत से सेवा के कार्य। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी वैष्णव लोग हैं अधिकांश इसी के रस के उपासक, और चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए आए थे। क्या देने के लिए? अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नत जल रसांग स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम। क्या देने के लिए आए? स्वभक्ति श्रियम, किंतु कैसी? अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसम, यहां पर छेद मत कर दो, पूर्ण विराम मत दो, तत्कर्पट हो जाएगा। समर्पयी तुम देने के लिए, क्या चीज? अब वो पूरा एक साथ में कहो, समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम, बीच में छेद कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्नत उज्ज्वल रस रूपी जो अपनी स्वयं की जो भक्ति है, स्वयं कौन? राधिका। राधिका जो कृष्ण के प्रति पारकीय भावनाजुक्त जो भक्ति है, उन्नत उज्ज्वल रस उसको कहते हैं, उसकी श्री को देने के लिए, शोभा को देने के लिए। जैसे कमल में मंजरी होती है, आम्र में मंजरी होती है, उसकी शोभा है, ऐसे राधिका जी की प्रेम की शोभा क्या है? राधा जी का रूप है बहुत ही सुंदर, किंतु रूप की मंजरी कौन है? रूप ने? कमल का फूल यदि हिलता है तो उसकी मंजरी और जोर से इधर उधर लपट झपट करके हिलती है, उससे उसको अधिक आनंद होता है, यह मंजरी का। राधा कृष्ण के मिलन से राधा जी को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक प्रसन्नता होती है उन सखियों को उनकी सेवा की भावना लेकर, उद्दीपना के द्वारा होता है। जो जो भाव राधा जी में होगा, उन सखियों में होगा, उससे अधिक भाव परिस्फुट रूप में इनमें प्रतिबिंबित होगा। इनको कहते हैं मंगल मार्ग। यही स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति का श्रेय शोभा है। स्वमनराधिका जी, उनकी जो उनका जो महाभाव है प्रेम, वो तो किसी को मिल नहीं सकता, उसकी शोभा मिल सकती है। राधा जी के रूप की मंजरी है रूप मंजरी, राधा जी के भावों की मंजरी है उसको कहते हैं भाव मंजरी, राधा जी के विलास की मंजरी है उसको कहते हैं विलास मंजरी, राधा जी के राग की जो मंजरी है उसको कहते हैं राग। ये सब यही देने के लिए हुआ है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके रूप गोस्वामी का अपना जो भाव है उत्तरण किया, लिखा तो उन्होंने उज्जल नीलमणि और भक्ति स्वामी सिंधु में शांत दास सख्य बात्सल्य मधुर, और उसके कितने हजारों भागों को उन्होंने इसको बांट करके और उसको विचार किया, किंतु अपना उनका क्या भाव था ना? ये देखना। रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया बाहरी रूप से, वैराग्य जी को भक्ति रसम प्रयत्न अपायन मानुन भिक्षु बंधम कृपा बुद्धि पर दुख दुखी सनातन स्तम रघुनाथ, गुरु के प्रति दीक्षा गुरु के प्रति जैसा होना चाहिए प्रणाम, ऐसा सनातन गोस्वामी जी अहेतु की कृपा की के समुद्र हैं। मैं चाहता नहीं था भक्ति, अनभिक्षु मैं नहीं चाहता था और बिल्कुल अंध था, अंध माने क्या, तत्व ज्ञान से अंध था, और इन्होंने मैं जो चाहता नहीं था बिल्कुल अंध जोर से पकड़ करके हमारे मुख में प्रेम ढाली ही दिया। कृपा मुद्धि विजय पर दुख दुखी सनातन प्रभु आश्रय, ऐसे सनातन गोस्वामी जो करुणा के सागर हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। करुणा के सागर कौन है? संसार दावा नल लीढ़लोक प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम, करुणा के जो घन ये कौन है? सनातन गोस्वामी, उनको उन्होंने किसे किया, किंतु ये बाह्य प्रणाम, ये बाह्य प्रणाम। महाप्रभु जी ने उनको वैदिक भक्ति की शिक्षा दी वाराणसी, वाराणसी में उनको इसी रूप में उनको प्रणाम किया, और शिक्षा गुरु जो हैं, शिक्षा गुरु का उल्लेख नहीं करते, ये शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ये सब कुछ नहीं, उनको हमारे रूप गोस्वामी को प्रणाम क्या करते हैं, कहते हैं श्री रूप मंजरी प्रथिता पुरेश्मिन पुंसा परस्य नहीं बदनम पश्यसि बिंबा भरे खतम अनागत भर्तृकाया पद जत्ते बधाई किम कुसुम, बराबरी में प्रणाम प्रणाम नहीं चलता, नमस्कार इत्यादि नहीं चलता, मिल गए तो हंसी दिलगी ठिठोली के रूप में उनसे बात देख करके प्रसन्न हृदय से हो गए, कार्डिसी की जरूरी कुछ नहीं, ऊपर से सभ्यता की जरूरत नहीं, नमस्कार महोदय नमस्कार महोदय ये सब गाने की जरूरत, मिल गए मुस्कुरा दिए बस, उन्होंने उस मुस्कुराहट को ग्रहण कर लिया थोड़ा सा, वो भी मुस्कुरा दिए बस हो गया प्रणाम। और भाव नहीं जहां है वहां पर तो मुस्कुराहट आएगी नहीं, नमस्कार महोदय नमस्कार महोदय बस इतना ही तक रह जाएगा। यहां पर ऐसी बात से उनको प्रणाम किया जिसको रूप एकदम हृदय से आनंदित हो उठे, मुस्कुरा रहे हैं कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिद्ध शरीर से देखा रूप मंजरी को, खुद है रति मंजरी देखा उनको, और उनसे दिलगी करते हुए कुछ अटपटी सी बातें कही, रूप मंजरी तापुरुष अरे ब्रजपुर भर में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होती है, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, ब्रज में तुम्हारे जैसा पतिव्रता कोई नारी है ही नहीं, प्रथिता पुरेश मिन इस ब्रजपुर में, तो तो तुम्हारे पति तो गाय खरीदने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तीन चार दिन हो गए, अभी तक तो लौटे नहीं, मुझको पता है इस विषय का। पथिता पुरेश्म पुंसः परस्य नहीं पश्यसि इति, और दूसरे किसी का मुख तुम देखती नहीं हो अपने पति के अतिरिक्त, कहीं भी नजर तुम्हारी नहीं जाती, ऐसी ही तुम्हारी प्रतिष्ठा। किंतु ये क्या, मैं क्या भूल देख रही? पुंसः परस्य पदनं नहीं पश्यसि इति, बिंबाधरे खत्म मनागत भर्तृकाया जत्ते बधाई कुमुत सुख कर। ओ, तुम्हारे होठ बड़े लाल हैं। कैसे लाल हैं? बिंब की भांति बड़े पतले सूक्ष्म रस युक्त हैं। तो ये इस पर कुछ देख रहा हूं, देख रही हूं, कोई सुख पक्षी तो नहीं आया और आकर के बिंब फल के बहाने यहीं पर बैठ गया, आपको ही चोंच से देखा जे बिंब फल की नहीं, ये क्या? अरे तुम्हारा पतिपत धर्म कहां गया? पति तो है नहीं, फिर ये कैसे हो गई बात? यही कह करके कुछ हंसने लगे, मुस्कुरा दिया उन्होंने, बस प्रणाम का बाप हो गया। प्रणाम क्या होगा, लाखों कोटि ये प्रणाम। और सुन करके रूप मंजरी जी ने भी मुस्कुरा दिया। पर जगत में ऐसा ही होता है, इस जगत में भी दोस्तों से परस्पर मिलन होने पर ऐसा हो सकता है, ठठोली बोली ऐसे कुछ मनोरंजन की बातें हो जाती। सखा बहुत दिनों के बाद में आया, ऐसे कुछ बातें हो जाती। ऐसे ही अपने गुरु को देखो प्रणाम कर रहे हैं, यहां पर गुरु तो कहां, किंतु यथार्थ गुरुत्व यहीं पर। ये है रागानुगा भक्ति में भी रूपानुगा का ये प्रणाम, इसको कहते हैं रूपानुगा, रूपानुगत तो इसको कहते हैं। रागानुगा हो सकते हैं सभी, बहुत से हो सकते हैं, महाप्रभु के विचारधारा में आने वाले अधिकांशतः रागानुगा हो सकते हैं, किंतु होने पर भी रूपानुग होना बड़ा भारी कठिन है। सभी रूपानुग रागानुग अवश्यंभावी होंगे सभी, किंतु सभी रूपानुग हो जाएंगे ये मुश्किल। रूप गोस्वामी के खास जो विचार जो स्वाभाविक स्वरूपगत हैं, उसके अनुगत उसको लेकर के चलने पर ये होगा रूपानुग। इसलिए गौड़ीय वैष्णव में भी रूपानुग होना बड़ा भारी कठिन है, बहुत ही कठिन है। हमारा गौड़ीय वैष्णव विशेष करके हमारे सरस्वती जी के अनुग जितने हैं सब इसी के उपासक। इसलिए ये संबंध यदि हो गुरु का परमार्थगत और गुरु इसको ये दे चीज दें, तो ये सबसे बड़ा भारी गुरु है। इस चीज को जो उपलब्धि करेगा वो एक जन्म ही कोटि कोटि जन्मों तक, यहां तक कि कृष्ण और राधा जी के गोलोक वृंदावन में पाने पर भी उसका कृतज्ञ रहेगा और ऋणी रहेगा। शिष्य यदि ये नहीं समझता जे मैं उनका ऋणी हूं तो शिष्य है, समझा ही नहीं जिसे क्या उन्होंने दिया मुझे और मैं किस लिए ऋणी हूं। परमार्थ नाम की क्या चीज है, जैसे अधिकांश शिष्य और शिष्य आजकल होते हैं, समझा ही नहीं तो ऋणी किस लिए हूं। ऋणी तो वो हो गए जिसने 100 रुपया भी दे दिया, कोई श्रृंगार की वस्तु दे दी, कोई आभूषण दे दिया, कोई और चीज दे, उसके ऋणी तो बन जाते हैं, किंतु जो परमार्थ दिया उसका ऋणी नहीं बनते। इसका मतलब वो जानते नहीं जो परमार्थ किसको कहते हैं, विशेष करके ये सब चीजों को क्या वो समझेंगे, नहीं समझते। किंतु धीरे 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 जब ऊपर उठेंगे तब तो समझेंगे से हाँ ये परमार्थ क्या है और रूपानुग किसको कहते हैं और उनके हम कितने ऋणी हैं, ऐसा नहीं समझते। अभी भी हम लोग रूप गोस्वामी के ऋणी है, कैसे समझेंगे यदि कुछ उसमें प्रवेश करेंगे तो।
अन्यथा नहीं सके। इसलिए गुरु सेवा में सबसे बड़ा मैं तो ये समझता हूँ, रूप मंजरी की धूलि कणा के प्रति हमारा तनिक भी, लोग उत्पन्न जो करा देते हैं वही यथार्थ गुरु और परमार्थिक गुरु। और इस भाव को जो नहीं कर सकते तो हमारा गौड़ीय वैष्णव में उनका भी स्थान नहीं। को जो दे उसी के हम चिर कृतज्ञ और चिर ऋणी हैं। कल हम लोग विनोद ठाकुर ने भी इसी चीज का अधिक वर्णन किया है सिद्धि लालसा इत्यादि, जब अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रवेश करेंगे तो समझेंगे। इसके बाद का श्लोक, गो गोपक अनुबनम न तो उदार वेणुस्वनई कलपदई स्तनुभित सख अस्पंदनम गतिमतांग पुलकस्तरुणांग निर्जोग पास कृत लक्षण यो विचित्र। गो गोपक अनुबनम, गो माने गायों को, गोपक गो प प माने पालन पोषण, गाय का जो पालन पोषण करता है उसको कहते हैं गोप। कई हीन अर्थ में अर्थात अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हैं गोपकई गोपाल, कृष्ण के ये जो सब सखा है अल्प वयस वाले, इन सब को लेकर के न तो उदार वेणुस्वनई, इनको एक वन से दूसरे वनों में ले जाते हुए संचरित कर रहे हैं चराने के लिए। केवल चराना ही काम नहीं है, चराते हैं किस लिए, स्वच्छंद जीवन से चलते हैं स्वच्छंद, और इसमें सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। ये गोप जाति में गोचारक को ही ये संभव हो सकता है, और उसमें भी प्रत्येक वनों में जाने का उद्देश्य क्या है, गुप्त रूप में श्री जी का अन्वेषण है, उनका अनुसंधान कार्य है, उनको देखते कहां मिलेंगी, ये अनुसंधान के लिए चारों तरफ में वनों में जाते हैं ये कैसे कहां पर श्रीमती जी मिलेंगी। उदार वेणुस्वनई, उदार माने क्या, कोई चीज कोई व्यक्ति उदार तब होता है जो पात्र अपात्र का विचार ना करके सबको समान रूप में दे करके कोई चीज दे दे, तभी तो उदार है, उसे जो कुछ मांगा वही दे दिया। तो वेणुस्वनई प्रत्येक प्राणियों के हृदय में यरस का संचार करने वाली वेणु ध्वनि है, उदारता पूर्वक सबको देते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जितने वृक्ष लता गुल्म मृग हरिण मयूर सुख सारिका, कोई भी इनके बंसी के ध्वनि से वंचित रहता है, कोई भी नहीं रहता। इसलिए वेणु स्वनई उदार रूप में वेणु वादन करते हुए सबको ये प्रदान कर रहे हैं। कलपदई, कल माने होता है सुंदर, कलपदई अत्यंत आकर्षण, सब चीजों को आकर्षण कर लेते हैं, इतना सुंदर कलपदई। तनुभित्त सख, तनुभित्त प्राणी मात्र के लिए शरीर धारण करने वाले जितने भी, चाहे पेड़ हो लता हो गुल्म हो, अभी पीछे बतलाया हिरणियों को, हिरणिया बंसी ध्वनि सुनकर के कैसी हो जाती, स्वर्ग की नारियां कैसी हो जाती हैं, पेड़ वृक्ष लता गुल्म यहां तक कि मेघमंडल नदियां, इनकी क्या दशा हो जाती है, इस सब का उन्होंने वर्णन किया। वेणु सुनई कल्पदई अमृत सख्य, हे सख्य अस्पंदनम गतिमतां, ऐसा वेणु वादन करते हैं जो अस्पंदनम गतिमता, जो गतिमता जो जंगम है जो चलने वाले, उनको अस्पंदनम एकदम जड़ बन जाते हैं, और जो जड़ हैं वो चेतन बन जाते हैं। पुलकस तरुणा, अरे पेड़ों में भी पुलक आ जाती है, फूलों से भर जाते हैं, रोमे उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके पुलक हो जाता है और आंखों से प्रेम की धाराएं उनकी बहने लगती हैं। हिरण इत्यादि जो चलने वाले हैं, डरने वाले प्राणी, वो एकदम स्तंभित होकर के खड़े हो जाते हैं कृष्ण के पास में, और एक टकटकी लगाए हुए उनके तरफ में देखने लगते हैं। अश्वतन गतिमतन लुकस्तरुण निर्जोग बाष्प तलक्षण यो विचित्र, वो निर्जोग बाष्प तलक्षण यो विचित्र, निर्जोग और पाश से लक्षणान्वित होकर के बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। निर्जोग मैंने कल बतलाया था कि परसों बतलाया था, निर्योग निर्जोग कहते हैं निर्जोग है ना, निश्चय निश्चय न योग संगम जस्मान सप्रेम पार्श्व निर्योग पार्शम, निश्चित रूप में जो योग करा देता है जीवन भर के लिए ही नहीं, कोटि कोटि जन्मों के लिए जो योग करा देता है निशेष रूप में निश्चित रूप में, उसको कहते हैं निर्जोग। यहां पर योग का तात्पर्य साधारण रूप में बाहरी रूप में तो ये है, गायों को दूहते समय में बछड़े को जिस रस्सी से लगाकर गाय के पैर के साथ में थोड़ा सा अटका देते हैं जब तक ये दूध पूरा न दुहना हो जाए, उसको कहते हैं निर्जोग। अर्थात स्तन से उस बच्चे को दूर हटा दिया और मैया के पैर से उसको जोग कर दिया, बांध दिया, ये निर्जोग। और पाश कहते हैं दुष्ट वर्गों के लिए जो पैर चलाती है दूधते समय और गड़बड़ी करती है, भाग जाती है, दौड़ती है, उनका पैर पाश को संयुक्त रूप से बांधने के लिए जो रस्सी होती है उसको पाश कहते हैं। कृष्ण ने रेशम जैसे पाट की रस्सी उसको पीले रंग में रंग दिया और उसके दोनों छेरों में मणि मुक्ता जैसा उसमें चीज झालर जैसा लगा दिया, उसमें निर्जोग को लंबी रस्सी को उन्होंने अपने पगड़ी उष्णीष के ऊपर में जैसे पगड़ी बंधी है उसको ऐसे फेटा बांध करके तिरछा कुछ ऐसे लगा दिया बांध कर और झालर को लटका दिया, और जो पाश है उसको ऐसे लटका दिया कंधे पर रख करके दोनों तरफ से झूला दिया। ये गोपों के लिए ही संभव है, कृष्ण गोप जाति के हैं, गोप का स्वभाव ये उसको प्रकाश कर देते। कहते हैं कि ये निर्जोग और पाश ये वह नहीं पाश।